समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। समय है सुबह के 7:30 और 13 फरवरी की इस नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम विश्व रेडियो दिवस मना रहे हैं। आज का ही दिन था जब वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की गई थी। आज भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और हर क्षेत्र में इसका असर देखा जा रहा है, लेकिन रेडियो में ये एक उपकरण की भांति सहायता कर रहा है जो रेडियो की आत्मा यानी कि आवाज है उसका स्थान कभी नहीं ले पाएगा। आइए आगाज करते हैं कार्यक्रम का और आज के संक में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में है सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
Namaskar Nikhil, good morning to you and a warm welcome and a happy Friday to all you wonderful listeners tuned into FM Gold. It's our day today, yes, as Nikhil just pointed out, radio day, so turn up the volume and don't go anywhere. We have a cool entertaining session of Aatsaveri, your favorite magazine show, coming up right away. And of course, February 13 is celebrated as World Radio Day, as radio is a means of educating people, providing facts and information, and also promoting freedom of expression across cultures. Indeed, friends, radio continues to remain a number one source of mass media in the world. That's why UNESCO designated today as World Radio Day, a powerful tool that connects people together. And this year we also have a theme, Radio and Artificial Intelligence, adding this important distinction, AI is a tool, not a voice. Our correspondent has filed this report.
Akashvani has been serving the nation since its inception with the motto Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. Established in 1936 and brought under public ownership after independence, Akashvani has grown into one of the largest broadcasting organizations in the world in terms of the number of languages broadcast and the diversity of audiences served. Private FM radio complements public broadcasting by delivering local entertainment and information across urban and regional India.
Or is geet ke baad
chhaya ki
aur India radio
mile sur mera tumhara
you won the first prize
ye jana bahut romantic liye
head of the trade negotiations stand up stated
devas ke saath saath
it has undergone nine revisions
this is all India radio the news read by Anuja Kumar
namaskar
In his message on the occasion of World Radio Day, Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan said, "Radio plays a crucial role in disseminating information to the common people." He also recounted listening to the radio while growing up.
Radio plays a crucial role for the citizens. Radio is taking news to the cultural programs to the common public. So the entire country, the radio covered almost 70% of the coverage of the radios. The Akashvani played to a medium to connect to the citizen with the government are with the concern people content. The radio has a special place, so we are all celebrating the Radio Day.
As Raipur gears up to host World Radio Day 2026, avid radio listeners from Narayanpur district of Bastar division of Chhattisgarh spoke to Akashwani about their fondness for radio as an informative medium that has led to the development in the region.
Main Gulab Chand Baghel, Gram Binjali, Tehsil Narayanpur, Jila Narayanpur, Chhattisgarh ka rehne wala hun. मैं किसानी करता हूँ. रेडियो मेरे जीवन में बचपन से मैं सुन रहा था. हमारे गांव में लगभग 3 रेडियो था मात्र, जो मेरे पिताजी अपने समय में लिए थे, और उस रेडियो को सुनने के लिए पूरे गांव आता था. और एक शिक्षा का प्रद जो भी होता था, समाचार आता था, और शिक्षा में भी जो रेडियो हमारे लिए कारगर था. और जिस हिसाब से ये जो हमारे आदिवासी कल्चर है, आदिवासी हमारा क्षेत्र है, बहुमूल्य है, और हमारा जो यहाँ जितना भी है, नेटवर्क तो था नहीं, कोई था नहीं, केवल साधन तो था वो रेडियो था. तो रेडियो में हमारा जीवन को परिवर्तन लाया.
रेडियो इज इंटीमेट येट एक्सपांसिव, सिंपल येट पावरफुल. रेडियो इज अ ट्रस्टेड मीडियम कनेक्टिंग डिस्टेंट ज्योग्राफीज, डाइवर्स लैंग्वेजेस एंड काउंटलेस लाइव्स थ्रू शेयर्ड लिसनिंग. सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ से यूनेस्को के सहयोग से आज विश्व रेडियो दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है. ये संगोष्ठी इस वर्ष की आधिकारिक विषय वस्तु पर केंद्रित है, और इसमें इस बात पर विचार विमर्श होगा कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो प्रसारण में मानवीय आवाज को केंद्र में रखते हुए सामग्री निर्माण, श्रोता सहभागिता और पहुंच को मजबूत कर सकती है. सुनते हैं ये रिपोर्ट.
विश्व रेडियो दिवस पर आज रायपुर में होने वाले कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के विशेष स्मारक श्रृंखला स्वाधीनता का जयघोष, वंदे मातरम भारत की सांस्कृतिक धरोहर, एक संगीतमय यात्रा के अंतर्गत अगली 6 संगीत प्रस्तुतियों का डिजिटल विमोचन किया जाएगा. इस अवसर पर रेडियो की विकास यात्रा पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो विजुअल प्रस्तुतिकरण, चर्चा, विशेषज्ञ पैनल चर्चा सहित विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे. इनका उद्देश्य रेडियो माध्यम को तकनीकी रूप से सशक्त, समावेशी और भविष्य उन्मुख बनाना है. विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर.
और अब आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी में सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 तथा 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. श्री मोदी का शाम को सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है. सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित हैं. ये पहले अलग अलग स्थानों पर थे. कर्तव्य भवन 1 और 2 में कई प्रमुख मंत्रालय बनाए गए हैं.
Both houses of parliament will adjourn for a recess in the budget session to reassemble on the 9th of next month. The budget session is being held in 2 phases. The first phase began on 28 January with the address of President Draupadi Murmu to the joint sitting of both houses. The second phase will be held till 2nd of April.
भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए संशोधित मसौदा नियम जारी किए हैं, जिसमें मिट्टी की जांच, मौसम पूर्वानुमान और जैविक प्रमाणीकरण जैसे कार्यों पर होने वाले खर्च को कृषि ऋण में शामिल करने का प्रस्ताव है. मसौदे के अनुसार प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपए तक के कृषि और संबद्ध ऋणों के लिए संपार्श्विक और मार्जिन आवश्यकताओं में छूट दी गई है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना में आहरण सीमा को फसलवार वित्त पोषण के पैमाने के अनुरूप बनाया गया है, जबकि 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले सीमांत किसानों के लिए 10,000 रुपए से 50,000 रुपए की ऋण सीमा का प्रस्ताव हुआ है. भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पावधि फसलों के लिए 12 महीने और दीर्घावधि फसलों के लिए 18 महीने की समय सीमा निर्धारित की है. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता को बढ़ाकर 6 वर्ष करने का प्रस्ताव है.
Khelo Delhi, Delhi Khel Mahakumbh will start today, aimed at strengthening and promoting a vibrant sports culture in the national capital. Hosting a dialogue regarding the event with sports personalities and fitness coaches, Delhi Minister Ashish Sood said that the government will organize competitions in seven major sports disciplines. These include football, basketball, volleyball and kabaddi. He added that the event will also help assist and enhance sports infrastructure across Delhi.
2020 क्रिकेट विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया. भारत की 2020 विश्व कप में रनों के अंतर से यह सबसे बड़ी जीत है. भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 209 रन बनाए थे, जवाब में नामीबिया की टीम 10 गेंद शेष रहते 116 रन पर सिमट गई. इससे पहले कल एक अन्य मुकाबले में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से और इटली ने नेपाल को 10 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज सुबह 11 बजे कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। वहीं दिल्ली में 3 बजे कनाडा का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। वहीं शाम 7 बजे से चेन्नई में अमरीका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। और श्रोताओं, समय है प्रमुख महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाने का। सुभद्रा, कहां से शुरू करते हैं?
या स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स प्लेस्ड अ सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर फ्रॉम चेन्नई अंडर सस्पेंशन ऑन चार्जेस ऑफ डिमांडिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर्स। चेन्नई साउथ कमिश्नरेट Commissioner P. Manikavel was suspended and the CBIC Chief Vigilance Officer has referred the complaint to the CBI for further investigation. The order dated 7 February said that a complaint alleging a demand for illegal gratification was received against Manikavel and that he shall remain under suspension until further orders. Getting to Bengaluru now, opposition leader R. Ashoka alleged that government hospitals in Karnataka are facing a severe shortage of medicines and blamed the Congress government for mismanagement and budget cuts. He claimed over 800 essential medicines are unavailable, forcing patients to buy drugs outside, accused the government of neglecting the health sector to fund its guarantee schemes. He also criticized Congress MLAs for going on foreign tours during budget preparations, questioning the purpose and funding of the trips. Ashoka further alleged corruption of the excise department pointed to internal dissent within Congress and faulted the state government over the handling of the RCB, that's Royal Challengers Bengaluru celebration. Moving to Hyderabad now, the Telangana government has announced the launch of a new health scheme for government employees, teachers and pensioners within the next 15 days. During a high-level meeting chaired by the Chief Secretary Ramakrishna Rao at the Secretariat, it was decided that employees will contribute 1.5% of their basic salary towards this initiative. The state government will match this contribution with the Employees Health Scheme EHS Trust, estimating an annual expenditure of 528 crore each from both the employees and the government. निखिल, ओवर टू यू नाउ फॉर रेस्ट ऑफ द मेट्रो न्यूज।
जी हाँ, दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योगों से जुड़े हजारों कारीगरों को सहयोग देना है। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रस्तावित की गई है, ताकि कार्यक्रम का व्यापक विस्तार किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 12 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल मलकागंज चौक और तिमारपुर से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बस्तियों की सुधार योजना के तहत कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक कई बस्तियों के विकास के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की 146 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस बीच दिल्ली नगर निगम के अपर आयुक्त संतोष राय ने कल विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यस्त जोन में नागरिक सुविधाओं और सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के तहत श्री राय ने राजौरी गार्डन स्थित माधव पार्क में बागवानी और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की तथा स्थानीय निवासियों से बातचीत की। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कल दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में जाने माने लेखकों, मीडिया हस्तियों और जाने माने साहित्यकारों सहित करीब 50 लोग हिस्सा लेंगे। इस वर्ष महोत्सव का उद्देश्य साहित्य को एक जीवंत शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है। चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र ने टाटा ट्रस्ट और नेम फॉर हेल्थ वाटर एंड लाइवलीहुड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में टाटा ट्रस्ट के साथ 12 समझौता ज्ञापनों और नेम फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से राज्य में तेजी से बदलाव आएगा। इन समझौता ज्ञापनों में ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, जन स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास तथा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता देना शामिल है। सुरक्षा ऑडिट पूरे होने के बाद मुंबई मोनोरेल सेवाएं मई 2026 तक फिर से शुरू होने की संभावना है। चेंबूर और संत गाडगे महाराज चौक के बीच कॉरिडोर सभी तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद फिर से खुलने की उम्मीद है। सेवाओं के पुनः शुरू होने से इस मार्ग पर रहने वाले निवासियों के लिए आवागमन और भी आसान हो जाएगा। और ठाणे यातायात पुलिस ने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के मद्देनजर कोपिनेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या को देखते हुए यातायात प्रतिबंधों की घोषणा की है, ताकि मंदिर परिसर में भीड़भाड़ को रोका जा सके और पैदल यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो सके। अब चलते हैं कोलकाता की तरफ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने हुगली जिले के सप्त ऋषि घाट पर त्रिवेणी कुंभ महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के शुभ संगम का प्रतीक है। त्रिवेणी कुंभ पोरी चलोना समिति द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं, संतों और स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ उमड़ी। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पुलिस और नागरिक सुरक्षा कर्मियों सहित व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। ये थे अब तक के महानगरों से जुड़े हुए प्रमुख समाचार। और सुभद्रा, हम लेते हैं हाल ही मौसम। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात। यहां पर आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, धुंध रह सकती है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता की बात की जाए तो वहां सुबह के समय हल्की धुंध देखी गई और दिन के समय मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुभद्रा, अन्य महानगरों का मौसम आज कैसा रहेगा?
Yes, Nikhil, Chennai is expected to have fog, mist in the morning and partly cloudy sky will be seen later on. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 31. Bengaluru is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 15 degrees Celsius. Maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have fog, mist in the morning and partly cloudy sky will be seen later. The temperature will hover between a minimum of 17 degrees Celsius and a maximum of 31 degrees Celsius.
और अब समय हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का, अपने श्रोताओं को उन कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने का जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की थी। तो श्रोताओं को बता दें कि वर्ष 1633 में आज के दिन ही इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो को रोम पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 1689 में विलियम और मैरी इंग्लैंड की संयुक्त शासक घोषित हुए थे।
1751 मुजफ्फर जंग हिदायत द थर्ड निजाम ऑफ हैदराबाद passed away, leading to increased French involvement in Indian domestic politics. And 1861 this day, Abraham Lincoln was declared President-elect of the United States in Washington, D.C.
वर्ष 1795 में आज के दिन ही अमेरिका में पहली स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तरी कैरोलिना में खोली गई थी और वर्ष 1880 में थॉमस एडिसन ने एडिसन इफेक्ट की पुष्टि आज के दिन ही की थी।
And 1911, Sarojini Naidu first met Mahatma Gandhi in London, beginning a lifelong association in India's freedom movement. And in the year 2000, February 13, the last Peanuts comic strip is published. The very last installment was published in newspapers around the world on the day following the death of its creator, Charles M. Schulz, who left us this day on 12 February. The much-loved cartoon series featuring the characters of Charlie Brown, Snoopy, Lucy and Linus with his blanket. Peanuts grew in popularity. Books were published. 1965, it appeared on the cover of Time magazine. Same year, the first animated TV special was broadcast, winning Schulz's first Grammy Award. An off-Broadway show also ran for 4 years, followed by a musical.
और थोड़ा सा पीछे जाकर अगर बात करते हैं तो वर्ष 1931 में आज के दिन ही नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी और वर्ष 1959 में आज के दिन ही बच्चों की पसंदीदा बारबी डॉल की बिक्री शुरू की गई थी। और आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 2001 में अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह इरोस पर पहला मानव रहित यान उतरा था और आज के दिन ही वर्ष 2004 में भारतीय टीम ने कुआलालंपुर में 10वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और समय है अब उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर जिनकी आज जयंती है या फिर आज जिनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले इस क्रम में हम याद कर रहे हैं उस्ताद आमिर खान साहब को। वे भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे और उस्ताद आमिर खान साहब को कला के क्षेत्र में वर्ष 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे ऐसे फनकार थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। खासतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जब हम बात करते हैं तो उनकी गायकी गहरी, गंभीर, आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण और विलंबित लय में नजर आती है।
And of course, he developed his own gaiki, that's a singing style influenced by the styles of Abdul Wahid Khan, Vilambit Tempo, Rajab Ali Khan, Tans, and Aman Ali Khan, Merukhan, Jogia More Gharaye. This is the tune you are going to listen to now from Ustad Amir Khan. Gar 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 And friends, from Indian classical, we move to a German composer. Richard Wagner passed away this day in 1883 at the age of 69. Richard Wagner is best known for creating several complex operas. His compositions were really ahead of its time in that it combined literature, visual elements and music in a way that would anticipate the future of film. Film composers including John Williams were inspired by Wagner's music. His work would later influence modern film scores, including those of the Harry Potter and Lord of the Rings film series.
आज ही पुण्यतिथि है डॉक्टर तुलसीराम की। वे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, चिंतक और शिक्षाविद थे जिन्हें साहित्य के सशक्त आवाज के रूप में जाना जाता है। अपनी आत्मकथात्मक कृतियों के लिए विशेष रूप से वे प्रसिद्ध रहे और आपको बता दें कि उनकी चर्चित आत्मकथा मुरदहिया हिंदी दलित साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की सामाजिक व्यवस्थाओं, भेदभाव और संघर्षों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। और इसका दूसरा भाग मणिकर्णिका भी अत्यंत चर्चित रहा था। डॉक्टर तुलसीराम ने अपने लेखन में सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया था।
एंड फ्रेंड्स, ट्रिब्यूट्स टू सरोजिनी नायडू, इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट। वी सेलिब्रेट हर बर्थडे एज नेशनल विमेंस डे इन इंडिया एवरी ईयर ऑन दिस डे। सो सरोजिनी नायडू वाज बोर्न दिस डे इन 1879। शी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। एंड ऑफ कोर्स शी वाज फेमस फॉर हर निकनेम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया because of her poems. Sarojini Naidu was not only a freedom fighter, but she also became the first woman governor of the United Province, the present Uttar Pradesh. And she became the second woman president of the Indian National Congress in 1925 and went to South Africa as a representative of India in 1932. Her poetry includes both children's poems and other written on more serious themes, including patriotism, romance and tragedy. Now, friends, a sample of Naidu's voice.
Friends, I come to you from many thousand miles away as the ambassador of a very ancient country to the youngest nation in the world. It may surprise you that a country which you are taught to regard as conservative should have chosen a woman to be its representative and ambassador.
और श्रोताओं को बता दें कि सरोजिनी नायडू ने बचपन से ही साहित्य और भाषाओं में रुचि दिखाई। अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में कई सारी उत्कृष्ट कविताएं उन्होंने रची थीं। वे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार की भी अग्रणी थीं और महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्होंने काफी प्रेरित किया था। और आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है राजेंद्र नाथ की। वे हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज और विशिष्ट कॉमिक टाइमिंग से लोगों को खूब हंसाया। उन्होंने पंजाबी, भोजपुरी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। और आपको बता दें कि वर्ष 1961 में बनी फिल्म जब प्यार किसी से होता है, उस फिल्म में उन्होंने पोपटलाल का किरदार निभाया था जो युवाओं के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। आज भी लोग उन्हें पोपटलाल के नाम से भी याद करते हैं। 1960 और 70 के दशक में कई सफल फिल्मों में नजर आए और आइए सुनते हैं उनकर फिल्माया गया उन्हीं का ये डायलॉग।
ये बात नहीं हुजूर, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये ताबेदार भी खासुल खास लखनऊ का बाशिंदा है। जी आदाब बजा लाता हूँ।
अच्छा, मगर लिबास से तो आप बिल्कुल पागल लगते हैं और लब लहजा भी आपका पंजाबियों का है।
उसकी वजह यह है, बचपन में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और वो खून बहा था कि मैं आपसे क्या अर्ज करूं।
फिर
उसके बाद अस्पताल में जो मुझे खून दिया गया वो पंजाबी का था, इसलिए अब मैं रुपए में 60 पैसे पंजाबी लगता हूँ।
अच्छा, लखनऊ में आप किस जगह रहते थे?
वेल, समुंदर के किनारे।
लखनऊ में समुंदर?
क्या भूल गया मैं, आई एम इडियट, मेरा मतलब है समुंदर होटल के सामने।
अच्छा, कोई नया होटल खुला होगा ऐसा?
यस, जस्ट रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड, यू नो, प्लीज सिट डाउन।
And friends, birth anniversary of country legend Waylon Jennings, whose music was characterized by his powerful, rough-edged singing voice that's baritone with a growl, while his musical style had a mix of folk lyrics, rock rhythms, and honky-tonk style instrumentation. And he inspired a whole bunch of alternative country musicians and neo-traditionalists. This song is called I've Always Been Crazy, Waylon Jennings. Here goes.
I can't
آج ہی پنیتھی ہے اخلاق محمد خان شہریار کی، وہ اردو کے مشہور شاعر تھے۔ کون اخلاق محمد خان اردو شعر و سخن کی دنیا میں شہریار کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے فلموں میں بھی گیت لکھے تھے اور بھارتی سینما میں میل کا پتھر ثابت ہوئی ہٹ فلم امراؤ جان کی مشہور غزل آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے۔ اخلاق محمد خان صاحب کو گیان پیٹھ پرسکار اور ساہتیہ اکادمی پرسکار سہیت کئی اہم سمانوں سے نوازا گیا تھا۔
بس ایک بار میرا کہاں، بس ایک بار میرا کہاں، مان لیجیے بس ایک بار میرا کہاں، مان لیجیے دل چیز کیا ہے آپ میری جان۔
اور شروع آپ کو بتا دیں کہ آج ہی پنیت تھی ہے او این وی کروپ کی، وے ملیالم کے پرکھیات کوی گیتکار اور شکشاوید تھے۔ آدھونک ملیالم کویتا کے پرمکھ ستمبھوں میں گنے جاتے ہیں اور ان کی رچناؤں میں مانویہ سمویدنائیں، ساماجک پرتیبدھتا تتھا پرگتیشیل وچاردھارا سپشٹ روپ سے دکھائی جاتی ہے۔ انہیں پدم شری اور پدم وبھوشن جیسے اچھ راشٹریہ سمان سے سمانت کیا گیا تھا۔
And friends, today is birthday of Peter Gabriel, founder leader of the progressive rock band Genesis, and then a solo artist, who is also a world music enthusiast, who has recorded with artists around the globe, and then above all, he's a human rights activist. A snatch of his big-time hit, Salisbury Hill.
Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe.
آج ہی پنیتھی ہے دتا جی راؤ گائیکواڑ کی، وہ بھارت کے پرسدھ کرکٹر تھے جو مکھ روپ سے دائیں ہاتھ کے بلے باز کے روپ میں جانے جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ دتا جی گائیکواڑ نے 1952 میں انگلینڈ کے سامنے اپنا ٹیسٹ پدارپن کیا تھا اور 1969 کے انگلینڈ دورے پر بھارتی ٹیم کے کپتان بھی رہے تھے۔ انہوں نے پرتھم شرینی کرکٹ میں 11,000 سے ادھک رن بنائے، جن میں سے کئی شتک بھی شامل ہیں۔ اور آج ہی ہم یاد کر رہے ہیں ونود مہرا صاحب کو، جن کی آج جینتی ہے۔ ونود مہرا ہندی سنیما کے لوک پریہ اور پرتیبھاشالی ابھینیتا تھے۔ انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات بال کلاکار کے روپ میں فلم راگنی سے کی، لیکن مکھیا ابھینیتا کے روپ میں انہیں پہچان 1970 کے دشک میں ملی تھی۔
میں گنگناتا ہوں، میں نے ہنسنے کا وعدہ کیا تھا کبھی، اس لیے اب صدا مسکراتا ہوں میں، گیت گاتا ہوں میں گنگناتا ہوں، میں نے ہنسنے کا وعدہ کیا تھا کبھی، اس لیے اب صدا مسکراتا ہوں میں۔
اور شروع انہوں نے انوراگ، امر پریم، گھر، سورگ، نرک، جانی دشمن تتھا لال پتھر جیسی کئی فلموں میں چرچت بھومکائیں نبھائی تھیں، اور فلم گھر میں ریکھا کے ساتھ ان کی بھومکا کو وشیش سرانہ ملی تھی۔ آئیے سنتے ہیں انہیں کی فلم کا ایک دوسرا گیت۔
آپ سے بھی خوبصورت آپ کے انداز ہیں، آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز ہیں،
اور شوتاؤں چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ آج ہی جینتی ہے جگجیت سنگھ اروڑا کی۔ وہ بھارتی سینا کے ورشٹ ادھیکاری تھے جنہیں 1971 کے بھارت پاکستان یدھ میں ان کی نرنائک بھومکا کے لیے وشیش روپ سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے برٹش بھارتی سینا میں اپنے سینیہ کریئر کی شروعات کی تھی اور 1971 کے یدھ کے دوران وہ پوروی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف تھے۔ اور فی الحال آپ سبھی سے انمتی لینے کا سمے ہو رہا ہے، تو نکھل اور سبھدرا کو کارکرم آج سویرے یہیں پر سمپن کرنے کی اجازت دیجیے۔
Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day.
Namaskar.